नमस्कार भारत, तारीख 25 सितंबर दिन मंगलवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक अधिवेशन की आज से शुरुआत। कश्मीर का मुद्दा उठा सकता है पाकिस्तान, लेकिन भारत भी है तैयार। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी, 10 जिलों में हाई अलर्ट घोषित।
अगले 24 घंटों तक जो हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी स्थान में बारिश हो सकती है, ऊपर इलाकों में स्नोफॉल हो सकती है, इसके लिए वार्निंग इशू की गई है।
झारखंड के गोड्डा जिले में अडानी के पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ स्थानीय किसान, जबरन जमीन छीनने के आरोप।
मेरा अड्डा ढा रहा था और हम उनको कहे कि क्यों अड्डा ढा रहे हैं, तो कहा कि तुमको अभी इसी जमीन में गाड़ दें।
होगी अन्य खबरें और अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधु वासिनी से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नामित अपने उम्मीदवार ब्रेट कैवनो का एक बार फिर खुलकर बचाव किया है। कैवनो पर दो महिलाओं द्वारा यौन शोषण के आरोप लगाए जाने के बाद उनका नामांकन रद्द किए जाने की मांगें तेज हो गई हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कैवनो की नियुक्ति की पुष्टि जल्दी ही हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें इस बात का दुख होगा। वो एक अच्छे इंसान हैं, उनका अतीत पूरी तरह बेदाग है। जो लोग कैवनो पर आरोप लगा रहे हैं उनके बयानों में कोई दम नहीं है। जज कैवनो एक बेहतरीन इंसान है और मैं पूरी तरह से उनके साथ हूँ। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। दूसरी तरफ कैवनो ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो उससे डरकर रेस से बाहर नहीं होंगे। कैवनो पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिलाओं में से एक क्रिस्टीन ब्लाजी फोर्ड ने कहा कि वो भी डरी हुई हैं, लेकिन डर की वजह से उनके खिलाफ गवाही देने से पीछे नहीं हटेंगी। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर ट्रेड यूनियन के हजारों सदस्य विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए हैं। प्रदर्शनकारी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मारिसिया मैक्री की आर्थिक नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए राष्ट्रपति भवन के सामने एकजुट हो गए हैं। यह विरोध प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहा है जब अर्जेंटीना अगले दो दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। ट्रेड यूनियन के नेताओं ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को यह डील रद्द करनी चाहिए और अपने कड़े फैसले वापस लेने चाहिए। पिछले कुछ वक्त से अर्जेंटीना गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पिछले महीने राष्ट्रपति मैक्री ने टीवी पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि अर्जेंटीना आमदनी से ज्यादा खर्च करने की आदत बरकरार नहीं रख सकता। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो निकट भविष्य में उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग उन के साथ दूसरी मुलाकात कर सकते हैं। ट्रंप संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर उत्तर कोरिया के साथ हुई उनकी बातचीत प्रगति पर है। जैसा कि आप जानते हैं, किम ने मुझे एक खूबसूरत चिट्ठी लिखकर दोबारा मिलने को कहा था। हम दोबारा मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो इस बारे में काम कर रहेंगे। ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द। डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन ने इस साल जून में सिंगापुर में पहली बार मुलाकात की थी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। क्रोएशियाई फुटबॉलर कप्तान लुका मोद्रिच को फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रियल मैड्रिड के मिडफील्डर यानी 33 वर्षीय मोद्रिच ने इस साल क्रोएशिया की टीम की कप्तानी करते हुए इसे फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। मोद्रिच को लंदन के एक कार्यक्रम में यह अवार्ड दिया गया। पिछले एक दशक में ये पहली बार है जब ये अवार्ड लियोनेल मेसी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अलावा किसी दूसरे फुटबॉलर को दिया गया है। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लिवरपूल के मोहम्मद सलह को भी नामित किया गया था। वहीं फीफा विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड लगातार छठी बार ब्राजील की मार्ता के नाम रहा। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं और मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा जोर शोर से उठाने की ठान ली है। वहीं भारत ने भी उसका जवाब देने के लिए कमर कस ली है। आज से संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक अधिवेशन में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों और राजनेताओं के संबोधन का सिलसिला शुरू हो रहा है। इसी के मद्देनजर भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी अमरीका पहुंच चुकी हैं। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
पिछले कई वर्षों की तरह इस साल भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक अधिवेशन में पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रहा है। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान की विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने यह ऐलान कर दिया है कि कश्मीरियों को पाकिस्तान समर्थन जारी रखेगा। याद रहे पिछले हफ्ते भारत ने पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री इमरान खान की दोनों मुल्कों के बीच बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू करने की पेशकश पहले तो मंजूर कर ली थी, लेकिन भारतीय कश्मीर में चरमपंथी हमलों के बाद उसे ठुकरा दिया था। भारत का कहना है कि जब तक आतंकवाद को पाकिस्तान से समर्थन मिलता रहेगा तब तक बातचीत नहीं हो सकती। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जनरल असेंबली से अपने संबोधन में कश्मीर में जारी हिंसा और मानवाधिकार के उल्लंघन के बारे में भी बात करेंगे और इस सिलसिले में खासकर संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट का भी हवाला देंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के दूत सैयद अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के मुद्दे को जनरल असेंबली में उठाने की संभावना के बारे में जवाब देते हुए कहा,
वी हैव अ ग्रेट रेजोनेंस इन टर्म्स ऑफ आवर पोजीशन।
भारत दूसरे मुल्कों के साथ सहयोग की जो पॉलिसी अपनाए हुए है उसको बहुत समर्थन मिलता है और अगर कोई ये चाहता है कि वो अपना अलग एक राग अलापता रहे तो वो जरूर ऐसा करना जारी रखें। संयुक्त राष्ट्र जैसे प्लेटफॉर्म पर इस तरह के अकेले खिलाड़ियों का कोई भविष्य नहीं है। हमने पहले भी कई बार ऐसे मुद्दों का डट के सामना किया है और हमें यकीन है कि अब भी हम इसका बखूबी मुकाबला करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय दूत सैयद अकबरुद्दीन के शब्द। भारतीय दूत ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा। उनका कहना था कि भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद को एक बहुपक्षीय मुद्दे के तौर पर उठाएगा क्योंकि चरमपंथ से पूरे विश्व को नुकसान होता है। अमरीका और भारत यह आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान में आतंकी गुटों को शरण दी जाती है जो भारत और अफगानिस्तान में हमले करते हैं। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 29 सितंबर को सुबह के हिस्से में जनरल असेंबली को संबोधित करेंगी जबकि पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी उसी दिन शाम के सेशन में संबोधन करेंगे। भारतीय विदेश मंत्री अपने संबोधन में आतंकवाद के अलावा जिन मुद्दों को उठाएंगी उनमें जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और विकास के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की मांग भी दोहराई जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन के साथ साथ ही भारत की विदेश मंत्री अपने दौरे के दौरान 25 से अधिक देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधियों से मुलाकातें भी करेंगी। भारत और पाकिस्तान की विदेश मंत्रियों के बीच वैसे तो कोई मुलाकात तय नहीं है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि सार्क की बैठक के दौरान दोनों मंत्री एक दूसरे से सलाम दुआ कर सकते हैं। आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें अधिवेशन में विश्व भर के नेताओं के संबोधन का सिलसिला शुरू हो रहा है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी आज महासभा को संबोधित करेंगे। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम।
बीबीसी हिंदी। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश का कहर अभी भी जारी है। प्रदेश सरकार ने 12 में से 10 जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर रखा है। खतरे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुल्लू जिले में 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी थी। वहीं प्रदेश सरकार ने केंद्र से फौरी राहत के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है। शिमला से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश में बेमौसमी बारिश की वजह से राज्य के 12 में से 10 जिलों में जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश का सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ा है। इस मौसम में प्रदेश में मक्का, सेब, आलू, अनार और सब्जियों का सीजन जोरों पर है, लेकिन बेमौसमी बारिश से यातायात और दूसरी मूलभूत चीजों पर सीधा असर पड़ा है। जिला मंडी के और तहसील में रहने वाले किसान ध्यान सिंह ठाकुर कहते हैं,
बहुत नुकसान हुआ है। आजकल हमारे यहाँ बेमौसमी सब्जी, गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च और अनार जैसे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि सब्जी मंडी हमारा माल नहीं पहुंच पा रहा है। हमारा रोड भी ब्लॉक है, NH जो हमारा माल सप्लाई जो मंडियों को होता है वो भी बंद है। 3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, यहाँ बड़े बुरे हाल है।
अचानक हुई इस बेमौसमी बारिश का असर सबसे ज्यादा चंबा, मंडी और कुल्लू जिले में हुआ है। भारी बारिश की वजह से प्रदेश के करीब 7 हाईवे और 300 से ज्यादा छोटी बड़ी सड़कें बंद हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र से जल्द राहत राशि की मांग की है।
नुकसान जो है अभी तक 1231 करोड़ रुपए का हमने आंका था, लेकिन ये पिछले कल 2 दिनों से जो बरसात हुई है, बारिश हुई है, ये नुकसान बहुत ज्यादा इससे आगे निकल गया है। कुछ दिन पहले ही हमने पत्र लिख करके गृह मंत्रालय को आग्रह किया है, निवेदन किया है कि 200 करोड़ रुपए हमको जो है वो जारी करें इमीडिएट असिस्टेंस के रूप में, लेकिन उसके बावजूद अभी तक वो पैसा नहीं आया है। आज हम दोबारा बात कर रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश में हर साल करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। यहां घूमने के लिए पर्यटक अमूमन गर्मियों के अलावा सर्दियों और सितंबर अक्टूबर में ज्यादा आते हैं, लेकिन अचानक हुई मूसलाधार बारिश ने सब कुछ चौपट कर दिया। शिमला के मशहूर मॉल रोड पर कैफे चलाने वाले पवन कुमार बताते हैं,
नुकसान तो बहुत ही ज्यादा झेल रहे हैं हम। जैसे हमारे कैफे को ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं यहाँ पे खोले हुए, उन 4 सालों में मैंने ऐसी भयंकर बारिश कभी नहीं देखी। और अभी टूरिस्ट का काफी नुकसान हो गया शिमला में। टूरिस्ट के अलावा लोकल्स जो लोग हैं वो भी नहीं आ रहे हैं, वो भी घरों से नहीं निकल रहे हैं। हमारा 15 सितंबर के बाद सीजन शुरू हो जाता था, तो ऑलमोस्ट हमारा जो रेस्टोरेंट है, जो कैफे है, पूरा फुल ही जाता था लंच टाइम में। बट आजकल अभी आप आके देखेंगे तो मेरे पास सिर्फ एक ही टेबल लगा हुआ है जो 4 लोगों का है।
मौसम में हुए इस भारी बदलाव का प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर भी असर हुआ है। जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू की ऊंची पहाड़ियों पर भारी हिमपात हुआ है। मशहूर रोहतांग दर्रा पर करीब 3 फीट बर्फ गिरी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं,
अगले 24 घंटों तक जो हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी स्थान में बारिश हो सकती है, ऊपर इलाकों में स्नोफॉल हो सकती है। इसके लिए वार्निंग इशू की गई है, जो हैवी टू वेरी हैवी जो बारिश है वो हो सकती है। जो हिमाचल प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट्स हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट चंबा, मीरपुर, बिलासपुर है, इसमें जो बारिश है वो हैवी बारिश होगी, लेकिन जो सेंट्रल और जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं इसमें हैवी टू वेरी हैवी बारिश जो हो सकती है।
हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश चंबा जिले में हुई है। अगले 24 घंटों में भारी बारिश की आशंका है। सरकार और प्रशासन ने जनता से अपील की है कि जब तक मौसम साफ नहीं होता, लोग अपने घरों और अन्य सुरक्षित जगहों पर ही रहें। पंकज शर्मा, BBC के लिए शिमला से।
एक तरफ जहां हिमाचल प्रदेश भारी बारिश से बेहाल है, वहीं पंजाब और हरियाणा में भी हालत बहुत ठीक नहीं है। पंजाब में भारी बारिश से लोगों के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आइए सुनते हैं।
बारिश में बहुत मुश्किल हो गई, जिनकी कच्ची छतें वो टूट गई, सड़कें उनमें बहुत ही खड्डे पड़ गए हैं, गाड़ी स्कूटर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है,
सुबह ऑफिस जाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, 2-व्हीलर पे तो जा ही नहीं सकते।
सुबह 6 बजे बारिश हो जा रही है सर, ड्यूटी में आने जाने मुश्किल हो गया।
बहुत ज्यादा मुश्किल से जा रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है और खतरा भी है, कोई मकान गिर रहे हैं,
पानी भर गया खेतों में, धान का माड़ा हाल है, बहुत ज्यादा है। 2 दिन ना बारिश हटी तक धान सारा खराब हो गई, सारा बारिश करके सारा धान खराब हो गया।
आज पंजाब में भारी बारिश के पूर्वानुमान के कारण सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहां मौसम का अब क्या हाल है, यही जानने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले चंडीगढ़ में मौजूद BBC संवाददाता अरविंद छाबड़ा से बात की।
जी, बारिश का माहौल ये कहना होगा कि काफी जगहों पर इस समय फ्लड लाइक सिचुएशन, बाढ़ की तरह की स्थिति बनी हुई है। बारिश अगर और होती है तो बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है उन्होंने पहले ही पंजाब सरकार को एक एडवाइजरी इशू कर दी कि पानी वहां पर जो पोंग डैम है उसमें बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। और अगर बात करें कितना पानी हो चुका है वहां पे, तो ऑलरेडी वहां पे 1385 फीट, यानी कि जो 1390 फीट वहां पे मैक्सिमम लेवल हो सकता है, तो उससे बस थोड़ा ही कम है। यानी कि बारिश अगर और होती है तो बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। फिलहाल जो आज की अगर बात करें तो अभी कम से कम बारिश ज्यादातर जगहों पर बंद है, लेकिन लैंडस्लाइड्स काफी हुए हैं, रास्ते काफी बंद हो चुके हैं और जो फसल है वो भी बहुत खराब हुई है पंजाब और हरियाणा की अगर बात करें तो।
मौसम विभाग का क्या अनुमान है आगे के लिए, वो क्या कह रहा है?
यह देखिए, मौसम विभाग का ये कहना है कि पहले की अगर मौसम विभाग की जो चेतावनी थी वो 3 दिन की थी, 3 दिन कल तक समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि आज भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि बारिश पिछले दिनों के मुकाबले कम होगी और कुछ ही जगहों पर होगी, तो वो जो अनुमान है कम से कम वो राहत की बात है जरूर यहाँ के लोगों के लिए, तीनों राज्यों के, पंजाब हरियाणा और हिमाचल के लोगों के लिए। लेकिन आज एहतियात के तौर पर पंजाब सरकार ने यहाँ छुट्टी की घोषणा की हुई है, स्कूल और कॉलेज सब बंद रहेंगे और आर्मी को भी सतर्क कर दिया गया है, क्योंकि जैसे मैं बता रहा था कि अभी फिलहाल बाढ़ तरह की स्थिति बनी हुई है
पंजाब में। बारिश का अनुमान बता रहे थे अरविंद छाबड़ा। बढ़ते हैं भारत प्रशासित कश्मीर की ओर। भारत प्रशासित कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ निरोधक अभियान में 1 जवान और 3 चरमपंथियों की मौत हो गई थी। ये अभियान रविवार से जारी था। रविवार को इस दौरान 2 चरमपंथी मारे गए थे। इस पूरे अभियान को लेकर मैंने अब से कुछ देर पहले श्रीनगर में BBC संवाददाता रियाज मसरूर से बात की।
जी, सेना के प्रवक्ता का कहना है कि ये जो ऑपरेशन है ये असल में रविवार को शुरू हुआ था, जब इन्फिल्ट्रेटर्स की एक टोली जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करते हुए भारतीय इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, तो उन्हें एंगेज किया गया टंगडार इलाके में जो कुपवाड़ा जिले में है और LOC के बिल्कुल करीब इलाका है। तो वहां पे जब झड़प हुई तो पहले रविवार को 2 चरमपंथी मारे गए, उसके बाद रुक रुक कर फायरिंग जारी रही सेना और चरमपंथियों के बीच, और कल जो है ऑपरेशन फिर से जो है रीइन्फोर्स किया गया और फाइनल असॉल्ट जिसे आर्मी कहती है वो लॉन्च किया गया, जिसमें और 3 चरमपंथी मारे गए, लेकिन इस फाइनल असॉल्ट में एक जो सैनिक है वो भी मारा गया।
इसमें कोई और जवान, किसी और जवान के घायल होने की कोई खबर है?
जी नहीं, सिर्फ एक सोल्जर जो है वो जख्मी हुआ है, बाकी उसके बाद जो है लड़ाई खत्म होने के बाद जो ये 5 चरमपंथी हैं उनके मारे जाने के बाद कॉम्बिंग ऑपरेशन भी कई घंटों तक जारी रहा, क्योंकि जो उच्च अधिकारी हैं सेना के उनका कहना है कि जाड़ा शुरू होने से पहले जो है वो दरअंदाजी जो है या इन्फिल्ट्रेशन उसमें इजाफा होता है, वो बढ़ जाती है और काफी प्रयास रहता है, ये ऐसा सेना का मानना है मिलिटेंट्स का कि वो LOC को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार कर लें।
ये देखने को मिला है कि दक्षिणी कश्मीर में जो अभी हाल फिलहाल में चरमपंथ बहुत तेजी से उभरा है, लेकिन उत्तरी कश्मीर में इस तरीके की घटनाएं अभी नहीं देखने को मिल रही थी।
जी देखें, पिछले कुछ महीनों से सेना और पुलिस के अधिकारियों ने हमें बताया कि ये जो मिलिटेंसी का फोकस है अब वो धीरे धीरे उत्तरी कश्मीर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उत्तरी कश्मीर में एक ये चीज है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान के साथ लगने वाली या पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के साथ लगने वाली, उसी सीमा के आसपास उत्तरी कश्मीर के सभी जिले हैं, जैसे बांडीपोरा हो गया या कुपवाड़ा हो गया या बारामूला है पूरा का पूरा, तो इसकी वजह यह है कि वहां पे ज्यादा सक्रिय, ऐसा मानना है सैन्य अधिकारियों का, ज्यादा सक्रिय नॉन कश्मीरी मिलिटेंट्स हैं, यानी जो पाकिस्तानी ओरिजिन के मिलिटेंट्स हैं वो आते हैं।
कश्मीर में चरमपंथियों के खिलाफ अभियान की जानकारी दे रहे थे रियाज मसरूर। अब जान लेते हैं कि आज के अखबारों में क्या कुछ खास है। अखबारों के साथ स्टूडियो में पहुंच चुकी हैं सिंधु वासिनी। जी बताएं।
जी शाहिद, रफाल डील को लेकर गहराता विवाद तकरीबन सभी अखबारों के पहले पन्ने पर नजर आ रहा है।
जी, जैसे कि टीवी में भी नजर आता है, डेली किसी न किसी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहती है रफाल
सौदे पर।
जी तो अमर उजाला की हेडलाइन है रफाइल पर रार। दैनिक जागरण लिखता है रफाइल पर भाजपा ने निकाला वाड्रा कनेक्शन, और कांग्रेस शिकायत लेके सीवीसी भी पहुंच चुकी है इस मामले में, और राहुल गांधी ने सोमवार को पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा वही बातें जो वो दोहराते रहते हैं कि देश के चौकीदार ने गरीबों, शहीदों और जवानों की जेब से 20,000 करोड़ निकालकर अंबानी को दे दिए। और दूसरी तरफ राहुल पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि यूपीए सरकार रॉबर्ट वाड्रा और उनके दोस्त जो हैं संजय भंडारी, उनको कंपनी का बिचौलिया बनाना चाहती थी, लेकिन जब ऐसा नहीं हो सका तो सौदा रद्द कर दिया गया। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर है जिसके मुताबिक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जा सकता है, शायद अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। इस बारे में केंद्रीय सूचना आयोग ने पीएम मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से फैसला लेने को कहा है। एक आरटीआई दायर की गई थी जिसके बाद सीवीसी ने ये निर्देश दिए हैं, और आरटीआई में पूछा गया था कि क्या लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद कोई पोस्टमार्टम कराया गया था जिससे यह साबित हो सके कि वाकई उनकी मौत हृदय गति रुकने से हुई थी।
अगर सिंधु आसनी, अगर ये रिपोर्ट अगर जारी होती है, अभी तो आशंकाएं हैं, लेकिन अगर जारी होती है तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि बहुत दशकों से ये इस पे चर्चाएं होती रही हैं।
सुभाष चंद्र बोस के अलावा
जी इनकी मौत को लेकर सबसे
संदेह रहा है। और इंडियन एक्सप्रेस में खबर है कि राहुल गांधी सोमवार को अमेठी पहुंचे जैसा कि, और वहां पे कुछ कांवड़ियों ने, कुछ युवक थे, उनका ऐसा कहना था कि वो कांवड़िए हैं, उन्होंने उनका बम बम भोले कह के स्वागत किया। और कई पोस्टर लगे थे अमेठी में जहाँ पे, उन पोस्टरों में एक तरफ राहुल गांधी की तस्वीर थी और दूसरी तरफ शिव भगवान की, और शिव भक्त राहुल गांधी लिखा गया था।
जब से कैलाश मानसरोवर यात्रा से आए हैं तो कांग्रेस कार्यकर्ता उनको इस रूप से भी दिखा रहे हैं।
वहाँ पे भी जाके उन्होंने शिव की पूजा की और पुजारी ने उनके माथे पे तिलक लगाया।
सिंधु आसनी, एक खबर जो कल पूरे हर जगह छाई रही वो थी, आप देख सकती हैं कि नौसेना के जो कमांडर अभिलाष टॉमी थे,
जिन्हें सुरक्षित बचा लिया गया,
वो द गोल्डन ग्लोब की एक रेस होती है, उसमें आपको पूरी दुनिया का चक्कर लगाना होता है अकेली नाव से। तो अभिलाष जो है वो हिंद महासागर में तूफान के कारण फंस गए थे, उनकी नाव क्षतिग्रस्त हो गई थी और उनकी रीढ़ की पीठ में भी चोट आई थी। उनको कल फ्रांस की एक नाव ने बचा लिया, और हर अखबार के पहले पन्ने पर यह खबर है। नवभारत टाइम्स लिखता है भारत ने ढूंढा, फ्रांस ने बचाया और ऑस्ट्रेलिया की शिप में पहुंचाया फंसे नेवी कमांडर को।
तो कई देशों का योगदान रहा है उन्हें बचाने में। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक और खबर है, भारतीय सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि अभी जम्मू कश्मीर में जैसे हालात हैं उसे देखकर लगता है कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत है। हालांकि उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि ये कैसे होगा। इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान से जो वार्ता रद्द की है भारत ने, इस फैसले का भी उन्होंने समर्थन किया।
अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सिंधु वासिनी।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
झारखंड के गोड्डा जिले में अडानी समूह के पावर प्लांट के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध हो रहा है। किसानों का आरोप है कि उनकी जमीनें जबरन ले ली गई हैं, इस कारण इन लोगों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। सरकारी तौर पर ली गई जमीनों पर कब्जे को लेकर अडानी समूह के अधिकारियों और किसानों के बीच कई जगहों पर कथित झड़पें भी हुई हैं। सुनिए गोड्डा से रवि प्रकाश की ये रिपोर्ट।
कभी गुमनाम सा रहने वाला गोड्डा इन दिनों सुर्खियों में है। इसकी वजह बना है यहाँ प्रस्तावित अडानी समूह का सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। यहाँ बनने वाले 8-800 मेगावाट क्षमता के दो पावर प्लांट से उत्पादित 1600 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को बेची जानी है। यह प्रोजेक्ट उस अंतर्राष्ट्रीय करार का हिस्सा है जो साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे के दौरान अडानी समूह और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच हुआ था। इसके बाद फरवरी 2016 में झारखंड सरकार और अडानी समूह के बीच एक एमओयू हुआ। इसके तहत गुड्डा जिले की करीब 925 एकड़ जमीन पर यह पावर प्लांट बनना है। इसके लिए सरकारी स्तर पर किसानों की जमीनें अधिग्रहित की गई हैं। इसमें धांधली के आरोप लग रहे हैं। गंगता गोविंदपुर गांव के किसान सुनरान हेमरम ने बीबीसी को बताया,
जन सुनवाई के लिए हम लोगों को गांधी ग्राम मोतिया में वहां बुलाया गया था। हम लोग आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड लेकर के गए, लेकिन एक ही रात में उन लोगों ने एक पीला कार्ड जारी कर दिया, और कहीं बाहर से आदमी को बोरो ला करके कुछ पैसे दे करके लाया गया था। उन लोगों के पास पीला कार्ड था, जो पीला कार्ड दिखाते थे वही उन लोगों को वहाँ प्रवेश होने दिया। हम लोगों को आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड का कोई वैल्यू नहीं दिया।
ऐसे ही एक किसान रामजीवन पासवान ने बताया कि जब वे मोतिया गांव में स्थित अपने खेत में काम कर रहे थे तो अडानी समूह के अधिकारियों ने उनसे कथित तौर पर मारपीट की। यह बताते हुए रामजीवन पासवान रोने लगते हैं।
घटना ये थी कि हम खेत पर गए और जाने के बाद जो है मेरा अड्डा ढा रहा था और हम उनको कहे कि क्यों अड्डा ढा रहे हैं, तो कहा कि तुमको अभी इसी जमीन में गाड़ दें।
मालीगांव के लोगों ने भी अडानी समूह पर स्थानीय पुलिस की मदद से दमन के आरोप लगाए हैं। यहां की लुखुमोई मुर्मू ने बताया कि बीते 31 अगस्त को इन लोगों ने उनकी धान की फसल उजाड़ दी और पैर पकड़कर मिन्नतें करने के बावजूद उनका दिल नहीं पसीजा। अडानी समूह के एक अधिकारी के पैर पकड़कर रोते उनकी तस्वीर पिछले दिनों सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। लुखुमोई मुर्मू ने बीबीसी से कहा,
अलैया घटना घटा वकान तलैया नवा जो अलैया प्लॉट को बड़ी चबा के तलैया अडानी कंपनी रन होड़ है कते।
वे संथाली में बोल रही थी कि वे अपनी जमीन का मुआवजा किसी कीमत पर नहीं लेंगी क्योंकि उन्होंने अधिग्रहण के लिए सहमति नहीं दी थी। उनके पड़ोसी राकेश हेमरम ने आरोप लगाया,
थाना में तो ऐसे तो केस करते हैं तो थाना वाला भी उतना ही पैसा खा ले जो हम लोग का केस को दबा देता है। वो लोग पहले भी जमीन में चिन्ह करने आया था, उससे भी झगड़ा हुआ था, तो वो लोग पहले हम लोग को ऊपर में केस कर दिया। अभी मर्डर का केस कहाँ पे वो लोग क्या क्या हो गया, हम लोग के ऊपर मर्डर का केस दे दिया।
कुछ जगहों पर जिंदा लोगों को मृत बताकर भी उनकी जमीनों का अधिग्रहण किया गया है। कागजों में मृत घोषित ऐसे ही एक किसान गणेश पंडित से मेरी मुलाकात मोतिया गाँव में हुई।
खेत नहीं देते हमको, मार दिया कंपनी ने, ये अडानी कंपनी, हम उसी में खाते कमाते हैं, मेरा 3 बेटा है और परिवार है, सब उसी में कमाते खाते हैं, खूब बढ़िया।
सरकारी नुमाइंदे ऐसे आरोपों से इनकार करते हैं। गोड्डा के अपर समाहर्ता अनिल तिर्की ने दावा किया कि जमीनों का अधिग्रहण नियमों के तहत किया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक कुल 517 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है, इनमें से अधिकतर रैयतों ने मुआवजे का पैसा भी ले लिया है। वैसे तो अडानी समूह के अधिकारी इन आरोपों पर बोलने से इनकार करते हैं, लेकिन झारखंड में इस समूह के एक उच्च अधिकारी अमृतांशु प्रसाद ने एक मीडिया बयान में दावा किया कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के कारण पावर प्लांट के विरोध में लगे हैं। रवि प्रकाश, बीबीसी के लिए गोड्डा में।
और अब खेल समाचार सूर्यांशी पांडे से।
सुबह सुबह आपको लेकर चलते हैं दुबई। आज सुपर फोर का 5वां मुकाबला है जिसके अंदर इंडिया का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा और ये मुकाबला आसान मत समझिएगा क्योंकि एशिया कप में अफगानिस्तान का प्रदर्शन बेहद अच्छा रहा है। फिर चाहे वो बांग्लादेश के खिलाफ 136 रनों से जीतने का आंकड़ा हो या फिर श्रीलंका जैसी टीम को 92 रनों से हरा कर एशिया कप से बाहर निकालने का आंकड़ा हो, इस लिहाज से आज का मुकाबला भारत और अफगानिस्तान दोनों के लिए अहम हो जाता है। एशिया कप भारत के हुए 4 मुकाबलों में भारत ने 4 मुकाबलों में फतह हासिल की, तो वहीं अफगानिस्तान के अभी तक 3 मुकाबले हुए हैं जिनमें से 2 मुकाबले उन्होंने जीते हैं और एक मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ 3 रनों से हारे थे। और अब आपको अगर क्रिकेट के मैदान से फुटबॉल के मैदान की ओर लेकर जाएं तो वहां पर अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी स्पेनिश लीग ला लीगा में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले गैर यूरोपियन खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने ब्राजील के डानी एल्विस का रिकॉर्ड तोड़ा है। एल्विस ने सेविला और बार्सिलोना के लिए कुल 422 मुकाबले खेले थे। मेसी ने सिर्फ बार्सिलोना की ओर से ही 423 मैच खेल लिए हैं।
वक्त हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का, लेकिन उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सिंधुवासिनी से।
बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नामित अपने उम्मीदवार ब्रेट कैवनो का एक बार फिर खुलकर बचाव किया है। कैवनो पर 2 महिलाओं द्वारा यौन शोषण के आरोप लगाए जाने के बाद उनका नामांकन रद्द किए जाने की मांगें तेज हो गई हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर ट्रेड यूनियन के हजारों सदस्य विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए हैं। प्रदर्शनकारी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मारिसिया मैक्री की आर्थिक नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो निकट भविष्य में उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग उन के साथ दूसरी मुलाकात कर सकते हैं। क्रोएशियाई फुटबॉलर लुका मोद्रिच को फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पहली बार है कि यह अवार्ड लियोनेल मेसी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बजाय किसी अन्य फुटबॉलर को दिया गया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे देवाशीष कुमार। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें bbchindi.com के साथ। मोहम्मद शाहिद को समस्त सहयोगियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।